परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जिसके गुनाह धुल गए, मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर खता, बख्शी गई जिसकी हर खता। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए, मेरा गम उतना ही बढ़ा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए आज फिर से तैयार बैठे हैं। मैं उन नए श्रोताओं का स्वागत करता हूँ जो आज पहली बार हमारे इस बाइबल अध्ययन में बैठे हैं। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हमारे हृदयों से बोले और बातचीत करने पाए, हमारे हृदयों को बदलने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो दुखी हैं, जो निराश हैं, चिंता और परेशानियों में हैं, जो बीमार हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके भी सुधि लीजिए ताकि आज के इस समय वे आपकी निकटता में आकर इस बात को महसूस करें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ प्रभु, इस समय हम सबको आपके हाथ में देते हैं, आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और आज का यह अध्ययन हमारे लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार से आखिरी अध्ययन है। अब तक हमने अध्याय 20 तक का अध्ययन कर लिया है और आज हम इस आखिरी अध्ययन को आरंभ करेंगे। और इस अध्याय में तीन घटनाएं हैं, गलील सागर जिसे तिबरियास झील भी कहते हैं, और दूसरी बात है झील के किनारे नाश्ता करना, और तीसरी घटना है यीशु द्वारा शमौन पतरस की मृत्यु की घोषणा। और हमने इस अध्ययन का आरंभ कर दिया था और 1-3 पद हम देख चुके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 21 के 4 पद को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बाइबल निकालें और हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। ध्यान दीजिए कि यीशु अपनी महिमा की देह में था, परंतु उसे पहचाना कठिन नहीं था। शिष्य नाव में सागर के जल पर थे और तट पर खड़े व्यक्ति को पहचानना थोड़ा संभव नहीं था। तब हम आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना 21 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। यहाँ पर यीशु कहते हैं बालकों। बालकों का अर्थ बच्चों से नहीं है, जैसा यूहन्ना अपनी पहली पत्री में उपयोग करता है। देखिए, उनका जवाब है नहीं। कैसा तीक्ष्ण बात है। वे अपनी विफलता के बारे में बात करना नहीं चाहते थे। यदि उन्होंने मछलियां पकड़ी होती तो बड़े आनंद से कहते हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे मित्रों, एक दिन वह हमसे भी यही प्रश्न करेगा, क्या तुमने मछली पकड़ी? पृथ्वी पर तुमने क्या किया? और मैं आशा करता हूं कि आपका उत्तर भी नहीं अर्थात ना में होगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। यहां पर मुख्य विचार यह है कि यीशु अपनों के जीवन को दिशा निर्देश देता है और उनका पालन अनिवार्य है। इसमें भरपूर सफलता है। उनके जाल भर जाने पर भी नहीं फटे। यह सुसमाचार की शक्ति है कि वे सुसमाचार के गवाह थे। हम यूहन्ना 21 उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, यूहन्ना में जो आत्मिक दृष्टि थी वह संभवतः शमौन पतरस में नहीं थी। 3 साल पहले यीशु ने इसी स्थान पर उन्हें अपनी शिष्यता में बुलाया था, परंतु वे लौट कर मछली पकड़ने फिर से चले आए थे। यीशु ने उन्हें दूसरी बार फिर बुलाया कि वह उन्हें मनुष्यों का मछुआ बनाएगा। पतरस में यूहन्ना की सी विवेक शक्ति नहीं थी, परंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि उसे जब भी यीशु के निकट आने का अवसर मिला वह उसके पास आया। अन्य शिष्य नाव ही में थे, परंतु पतरस नाव से कूदकर यीशु के पास से भागा। यह बड़ा ही विचित्र मनुष्य था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 8-11 पद में पढ़ते हैं, परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगे पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल ना फटा। यह बहुत ही विचित्र बात है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु का अंतिम और पुनरुत्थान के बाद का यह एकमात्र चमत्कार है, क्योंकि यह यीशु के पुनरुत्थान पश्चात की सेवा से संबंधित है। अतः यह चमत्कार बड़े महत्व का है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस लिखता है कि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा न जानेंगे। हमारा संबंध बेतलेहम में जन्मे यीशु से नहीं, पुनरुत्थित जीवित महिमा से पूर्ण मसीह यीशु से है, जो परमेश्वर की दाहिने ओर आसीन है अर्थात बैठा है। अतः पुनरुत्थान के बाद की उसकी सेवा हमारे लिए गंभीर महत्व रखती है। यहाँ यीशु के कुछ विशेष गुणों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, यीशु मानवीय बातों द्वारा ही चमत्कार दिखाता है। मच्छियों को उसने मछली पकड़ने में ही चमत्कार दिखाया। काना नगर में यीशु ने पानी को ही दाखरस में बदला था। परमेश्वर ने मूसा से पूछा कि उसके हाथ में क्या है, उसी लाठी को उसने सांप बनाया, वही लाठी आगे चलकर चमत्कारों में काम आई। दाऊद के हाथ में चरवाहे का सा सोंटा था, जिसे परमेश्वर ने उसके लिए राजदंड बनाया। यही बड़ी विशेष बात है कि आपके हाथ में जो भी है उसे ही परमेश्वर काम में लेता है। मनुष्य सदा यही सोचता है कि वह किसी और परिस्थिति में सेवा करे तो प्रभावी होगा, परंतु मेरे मित्रों, आप यदि सोचते हैं कि परमेश्वर आपको आपके स्थान और परिस्थिति में काम नहीं ले सकता है, तो वह आपको कहीं भी काम में नहीं ले सकता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर हर समय बहुतायत से करता है। जल के पात्र दाखरस से भरे हुए थे। 5,000 पुरुषों को भोजन कराने के बाद कई टोकरे भोजन बच गए थे। जाल में क्षमता से अधिक मछलियां थी, परंतु नहीं फटे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने गलील सागर के तट पर कोयले की आग में मछली सेक कर रखी थी, परंतु फिर भी उसने शिष्यों से मछली मांगी। वह उनकी सेवा की याचना कर रहा था। उन्होंने उसकी आज्ञा मानकर मछलियां पकड़ी थी, इसलिए वह उनकी भेंट चाहता था। ऐसी सेवा अति आशीषित होती है। पत्रस ने यीशु की सेवकाई के आरंभिक दिनों में जब मछली बहुतायत से पकड़ी थी, तब उसका जाल टूट गया था, अर्थात फट रहा था, और मछलियां निकल गई थी। परंतु पत्रस के लिए यहाँ संदेश था कि यीशु के सब अनुयायी विश्वासी नहीं होंगे। पत्रस को यीशु ने भेड़ चराने को बुलाया कि वह उन्हें क्या खिलाएगा। परमेश्वर का वचन और पुनरुत्थित महिमामय मसीह का शुभ संदेश सुसमाचार उद्धारक ही नहीं, रक्षक भी है। विश्वासियों को परमेश्वर के सामर्थ का सहारा प्राप्त है। मेरे मित्रों, इस घटना में हम देखते हैं कि यीशु के पास अपनों के लिए एक उद्देश्य है। वह हमारे जीवन को दिशा निर्देश देना चाहता है। यदि हम उसकी आज्ञा माने तो वह हमें आशीष देगा और हमारे मधुर सहभागिता रखेगा, अर्थात हमारे साथ सहभागिता रखेगा। वह हमारी इच्छाओं पर प्रभुता करेगा। हमारे मन पर प्रभु सेवा की प्रेरणा डालता है। यूहन्ना 21 अध्याय 12 से 14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि उससे पूछें कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। लिखा है आओ भोजन करो। मरकुस के सुसमाचार में 16 अध्याय उसके 15 पद में यीशु ने कहा, संपूर्ण संसार में सुसमाचार सुनाओ, परंतु जाने से पहले वह कहता है आओ भोजन करो। मेरे मित्रों, यहाँ सौम्यता तो यह है कि परमेश्वर स्वयं उन्हें भोजन खिला रहा है। वह चाहता है कि अपनों को खाना खिलाए, परंतु हमें उसके पास बैठना होगा कि हम अपने हाथों से भोजन कराएं। आगे हम देखते हैं पत्रस के साथ उसका विशेष वार्तालाप। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पत्रस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 17 पद में उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पत्रस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु लड़खड़ाने वाले विफल शिष्य को सेवा में स्थापित करता है। यह सीखने योग्य अति महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा की अनिवार्यता प्रभु से प्रेम है। प्रभु ने 3 बार शमौन पत्रस से प्रश्न किया, तीन बार पत्रस ने उत्तर दिया और तीन बार यीशु ने उसे कार्यभार सौंपा। तीन बार ही क्यों? डॉक्टर रोडेट के अनुसार इसका उत्तर है कि पत्रस ने तीन बार प्रभु का इनकार किया था, इसी कारण उसने तीन बार उससे अंगीकार भी करवाया। इसका एक और कारण भी है। मरकुस और लुका के वृतांतों के अनुसार जब यीशु ने उन्हें जाल डालने को कहा था तब उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी थी और उनके जाल फटने लगे थे। इसके बाद यीशु ने उन्हें प्रेरिताई का उत्तरदायित्व सौंपा था। परंतु आपको स्मरण होगा कि महायाजक के राजभवन में उसने गलत निर्णय लिया कि विपक्षियों के साथ आग तापे, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रतिकूल स्थिति में पड़ गया और जघन्य इनकार किया, अर्थात जबरदस्त और जोर से इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता। यहाँ भी आग है और प्रभु यीशु का ही विषय है और तीन बार यीशु का अंगीकार है तथा पत्रस की सेवा का पुनः स्थापन है। आत्मिक सौंदर्य का कैसा यह अनुपम दृश्य है मेरे मित्रों। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु के तीनों प्रश्न एक ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वे अलग अलग हैं। पहला प्रश्न है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पत्रस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? सबसे पहले तो वह उसे शमौन के नाम से पुकारता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र। यीशु ने उसे शमौन कहकर क्यों पुकारा? आपको स्मरण होगा कि जब अन्द्रियास उसे पहली बार यीशु के पास लाया था तब यीशु ने उससे कहा था, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। कैफा आरामी शब्द है और पत्रस यूनानी शब्द है, परंतु दोनों शब्दों का अर्थ है चट्टान, अर्थात तू चट्टान की नाई दृढ़ होगा। परंतु अभी एक प्रश्न है, इस कारण वह उसे शमौन कहता है। यूनानी भाषा में प्रेम के तीन शब्द हैं। पहला शब्द है इरोस, जिसे इरोस देवता से जोड़ दिया गया था और उसका अभिप्राय दैहिक वासना से था। बाइबल में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा शब्द है फिलो, इसका अर्थ है मानवीय संबंधों में अनुराग, धर्मशास्त्र में इसका प्रयोग किया गया है। और तीसरा शब्द है अगापे, यह प्रेम का अति कुलीन एवं उच्च प्रदर्शन है। डॉक्टर विंसेंट इसे मन सूचक शब्द कहते हैं। यह शब्द ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए काम में लिया गया था। यीशु ने पत्रस से प्रश्न करते समय यही शब्द काम में लिया था। कोई मुझसे पूछे कि मसीही विश्वास क्या है, तो मैं कहूंगा यीशु में विश्वास, परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार मसीही विश्वास सर्वोपरि प्रेम है। जैसा पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 13 पद में, कि सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु पत्रस पर उसकी चूक के कारण भरोसा नहीं कर सकता था, परंतु उसने उससे असीम प्रेम रखा। यूहन्ना कहता है 15 अध्याय उसके 13 पद में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। पत्रस ने जब यीशु का इनकार किया था तब यीशु पत्रस के लिए भी जान देने क्रूस पर चढ़ने जा रहा था, और पत्रस अपनी पत्री में गवाही देता है, जिसे हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 24 पद में पढ़ते हैं। वह कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए कि प्रभु का पहला प्रश्न था, शमौन क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम करता है? जब यीशु ने ऊपरी कमरे में कहा था कि शिष्यों में से एक उसे पकड़वाएगा, तब पत्रस ने मन में सोचा होगा, प्रभु मैं भी इन पर भरोसा नहीं करता, परंतु तू मुझ पर भरोसा कर सकता है। पत्रस यहाँ यीशु के प्रश्न के उत्तर में फिलो शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है अनुराग। तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। पत्रस ने क्यों प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया? अब उसका अहंकार टूट चुका था, अब से आगे वह डींग नहीं मारेगा, वह बड़ा काम करेगा, परंतु शांत रहेगा। यही कारण है कि वह कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने कहा, मेरे छोटे मेमनों को चरा, उसने यह नहीं कहा, मेरी भेड़ों को रिस दिला। दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में वह इस प्रकार कहता है, इनसे बढ़कर अर्थात वाक्यांश को छोड़ देता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यीशु शमौन की दीनहीन मनोदशा को समझ रहा था और इस कारण वह उसे उबारना चाहता था, परंतु पतरस निम्न स्तर पर ही था। दूसरी बार ईश्वर ने पतरस को आदेश दिया, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। इस बार यीशु बड़ी भेड़ों के विषय में निर्देश दे रहा था कि उन्हें भटकने से सुरक्षित करे। आप जानते हैं कि उसने बड़ी भेड़ों को मार्ग में रखने को क्यों कहा, क्योंकि मेमने भेड़ों के पीछे चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न था, तीसरी बार यीशु ने शमौन के स्तर पर आकर पूछा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास क्यों हुआ? आप कहेंगे कि यीशु बार बार उससे एक ही प्रश्न पूछ रहा था, इसलिए नहीं। इसलिए उदास हुआ कि प्रभु को उसके स्तर पर आकर प्रीति शब्द काम में लेना पड़ा था। मेरे मित्रों, अब उसमें अहंकारी मन नहीं रह गया था, अतः अधिक से अधिक बड़ी बात जो वह कर सकता था वह यही थी कि वह प्रभु से कहे, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु उसका मन जानता था कि वह उससे प्रेम रखता है। अब हम देखते हैं तीसरा आदेश, वह कहता है मेरी भेड़ों को चरा। बड़ी भेड़ों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। एक अंग्रेजी कवि मिल्टन ने अपने एक पादरी मित्र की समुद्र में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है लिसिडास। इस कविता में उसने एक वाक्य लिखा, भूखी भेड़े ऊपर देखती हैं परंतु उन्हें चारा नहीं डाला जाता। वह प्रचार मंच के बारे में कह रहा था और यह आज भी सच है। मेरे मित्रों, मैं आपके विवेक पर यह अंकित कर देना चाहता हूं कि आज विश्वासी की अग्नि परीक्षा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हमारे मस्तिष्क का प्रभु ज्ञान की कमी सेवा न करने का बहाना नहीं है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 और उसके 18 और 19 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु पतरस से कह रहा था कि वह शहीद होगा। पतरस ने यीशु को वचन दिया था कि वह आवश्यकता पड़ने पर जान भी दे देगा, और अब ऐसा वह करेगा। हम यूहन्ना 21 अध्याय उसके 19 के बी पार्ट से 21 पद तक देखेंगे, लिखा है, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? अब फिर पतरस का वही स्वभाव देखने को मिलता है। वह यूहन्ना के बारे में पूछता है कि हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 21 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि यूहन्ना की चिंता छोड़, वह अपनी सेवा की तैयारी करे क्योंकि उसे शहीद होना है। यूहन्ना चाहे उसके पुनः आगमन तक जीवित रहे, उससे पतरस को कोई भी प्रयोजन नहीं। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 21 अध्याय उसके 23 और 24 पद में, इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि यह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या काम। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ हमारे लिए अति उत्तम शिक्षा है। ज्ञान की कमी यीशु की सेवा से बचने का बहाना न बने। प्रश्नों के उत्तर पाने की प्रतीक्षा न करें। मेरे मित्रों, हर एक प्रश्न का उत्तर पाना आपका काम नहीं, आपका काम है यीशु का अनुसरण करना। यीशु ने यूहन्ना के विषय भविष्यवाणी नहीं की। अब वह चाहे यीशु के आगमन तक जीवित रहे, उससे पतरस की सेवा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है। यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। पतरस ने अपनी दूसरी पत्री में लिखा है 1 अध्याय उसके 14 पद में, यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु ने मुझ पर प्रकट किया है। कहा जाता है कि पतरस को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसने याचना की थी कि वह अपने यीशु की नाई सिर ऊपर रखकर क्रूस पर चढ़ाया न जाए, क्योंकि वह इसके योग्य नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु आपके मन, मस्तिष्क, आपकी इच्छा का प्रभु ठहरे। यदि वह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभु नहीं है तो वह आपका प्रभु नहीं है। अब हम अंतिम पद जो इस अध्याय का है पढ़ते हैं, यूहन्ना 21 उसके 25 में लिखा हुआ है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। यहाँ पर यूहन्ना का यह वाक्य अतियोक्ति नहीं है, पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यीशु मरकर फिर जी उठा, वह अनंत परमेश्वर है और हमारा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 21 अध्याय समाप्त होता है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार का है, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं और आपने इस बात को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वह परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि वह मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दे। वह क्रूस पर मर गया और दफनाया गया और जी उठा। आज भी वह जीवित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। वह अनंत परमेश्वर है और हमारा उद्धार करता है। क्या आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? सारी बातें आपको बता दी गई है, निर्णय आपको लेना है, क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने लोगों को ढूंढ रहा है ताकि वह उन्हें उद्धार, शांति और आनंद प्रदान करे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको वह शांति दे? यदि हाँ, तो आज ही आप उसके पास आएं। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आत्मिक रूप में और भी अधिक बलवंत करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैं जितना खामोश रहा मेरा गम उतना ही बढ़ा, रात और दिन मुझ पे खुदा हाथ तेरा भारी था। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मेरे खुदाया, मेरी खता को तूने माफ किया। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह दूर।